नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद्भागवतम का पांचवा स्कंद अध्याय 11 और श्लोक संख्या है 16। कौन सा लिखा है? 17वां लिखा है भारत, 16वां लिखा है। कोई तात्पर्य नहीं है। ओके, तो तात्पर्य वाला बाद में पढ़ेंगे, 16वां देख लेते हैं। भारते अपि अस्मिन् वर्षे सरित शैला सन्ति बहवः मलयः मंगलप्रस्थ मैनाकः त्रिकुटः ऋषभ कुटक कोलक सह्य देवगिरी ऋष्यमुक श्रीशैल वेंकेट महेंद्र वारिधार विश्व शक्तिमान रुक्षगिरी पारियात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन रैवतक कुकुब नील गोकामुख इंद्रकील कामगिरी इति च अन्ये च शतसहस्रशः शैलाः तेषां नितंब प्रभावा नदाः नद्यः च सन्ति असंख्याता। अनुवाद है, इलावृत वर्ष की भांति ऋक्षगिरी पारियात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन एवेर तक भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत और नदियां हैं। कुछ पर्वत इस प्रकार हैं: मलय मंगलप्रस्थ मैनाक त्रिकूट ऋषभ कुटक कौलक सह्य देवगिरी ऋष्यमुख श्रीशैल वेंकेट महेंद्र वारिधारा विंध्य शक्तिमान ऋक्षगिरी पारियात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन एवैतक कुकुभ नील गोकामुख इंद्रकील तथा कामगिरी। इनके अतिरिक्त अनेक पहाड़ियां हैं जिनकी ढालों से अनेक बड़ी तथा छोटी नदियां निकलती हैं। बहुत सारे नाम अभी भी प्रचलित हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये शास्त्र पुरवार करता है, ये कोई बने बनाए नाम नहीं है जो अभी भी चल रहे हैं। तो अभी दूसरा श्लोक नदियों का विस्तार करता है। एतासाम अपह भारत्यः प्रजा नाभिः एव पुनंतिनाम आत्मना उपप्रश्यन्ति चंद्रवसा ताम्रपर्णि अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विंध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मणंती सिंधु अंध श्रोण च नदौ महानदी वेदस्मृति ऋषिकृत्या त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती दृष्वती गोमती सरयू रोदस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रुह चंद्रभागा मरुद्वता वितस्ता असिक्नी विश्वा इति महानद्यः। अनुवाद है और तात्पर्य भी है। नदियों में से दो नदियां ब्रह्मपुत्र तथा शोण नद अथवा महानदियां कहलाती हैं। अन्य प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णावेन्या, भीमरथी, गोदावरी, ऋषिकृल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृष्टवती, गोमती, सरयू, रोदस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रुह, चंद्रभागा, मरुद्धता, वितस्ता, असिकनी तथा विश्वा। भारतवर्ष के वासी इन नदियों का स्मरण करने से पवित्र रहते हैं। कभी कभी इन नदियों के नामों का मंत्रवत जाप करते हैं और कभी कभी जाकर इनका स्पर्श और इनमें स्नान भी करते हैं। इस तरह भारतवर्ष के निवासी पवित्र होते रहते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, यह समस्त नदियां दिव्य हैं, अतः इनके स्मरण स्पर्श या स्नान से पवित्र हुआ जा सकता है। आज भी यह प्रथा चालू है। ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीजुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत में दूसरे और तीसरे स्कंद में जब सृष्टि की रचना हुई तो शुरुआत में विराट पुरुष के भी पुरुष सूक्त द्वारा प्रशस्ति की जाती है। इसमें भगवान के इस भौतिक संसार में जो प्राकृत्य का रहस्य है और उसमें भी जब व्यक्तित्व की बात आती है तो सारी सृष्टि की रचना एक विराट पुरुष के व्यक्तित्व के आधार पर रही है। एक पृथ्वी की ही क्यों बात करें, सारा संसार व्यक्त है। व्यक्त इसीलिए बनाया है क्योंकि जीव भी तो व्यक्त होता है, लेकिन वह आध्यात्मिक जगत से गिरा है और व्यक्त जगत में पैदा हुआ है। अज्ञानता के वश वो अपने आप को भौतिक प्रकृति का बना हुआ मानता है, लेकिन भौतिक प्रकृति और मनुष्य का शरीर तो उसमें सामंजस्य नहीं है। भगवान भौतिक प्रकृति सुखदेव गोस्वामी के मुख द्वारा एक जीवित प्रकृति बताते हैं। तो भागवत में भगवान का शरीर इस तरह भौतिकता में पंच महाभूत के बने हुए और अन्य तीन सूक्ष्म गुण उसके उपरांत 15 तत्वों की बात करते हैं। भूमि रापनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति मे बिन्ना प्रकृति अष्टदा। 8 प्रकार की प्रकृति बता देते हैं, लेकिन 15 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय और 5 इंद्रियों के विषय 15 हो गए, 23 तत्व। और जब जीव अंदर आता है तो 24वां बन जाता है। 24 तत्वों की उत्पत्ति भगवान ने की है, सही। और सारा विश्व जीवित है क्योंकि भगवान के निर्देश में काम कर रहा है। एक कार्यवाही जब होती है तो जीव की उपस्थिति मानी जाती है। तो जब सारी सृष्टि में कार्यवाही हो रही है तो वो जीवित क्यों नहीं मानी जाती? हम तो उसका दुरुपयोग करके उसको अपनी अज्ञानता से मृत बनाना चाहते हैं। अज्ञानता से उसको मृत मानते हैं, वो जीवित नहीं मानते। लेकिन यहां प्रभुपाद जी कहते हैं ये दिव्य है, दिव्यता वाली है। दिव्यता वाली चीज कभी मरती नहीं, वो पैदा भी नहीं होती, वो होती ही है। तो एकमात्र विषय दिव्यता को समझने का है, सही। आज भूगर्भ गोस्वामी और काशीश्वर पंडित दोनों का तिरोभाव भी मना रहे हैं। तो इनको क्यों याद करना चाहिए? और ये विषय भी देखो अनुरूप है। प्रभुपाद ने छोटे से तात्पर्य में लिखा है कि ये सारी नदियां दिव्य हैं, जीवित हैं। और जब गंगा की बात करते हैं तो गंगा का स्वरूप भी बताया जाता है, उसका वाहन भी बताया जाता है, हर एक नदियों के पीछे। शुरुआत में हमें भी ख्याल नहीं था, लेकिन हमारा जन्म तापी नदी के किनारे पर हुआ था। तापी का यह वर्णन है, उल्लेख दिया गया। ये सभी दिव्य नदी कहलाती है। तो भारतवासियों ज्यादातर सारे गांव इलाके तो अभी काफी अंदर प्रसारित हुए हैं, लेकिन मूल रहवास तो नदी किनारे ही तो था। जीवन जहां से प्रकट होता है वहीं तो होता है, सही। सुखदेव गोस्वामी को ये सारी नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम इत्यादि लिखने की क्या आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत में ये विंध्य विंध्याचल को पर्वतों का राजा बताया है, राधा रानी विंध्य की पुत्री बताई जाती है। ये क्या कपोल कल्पित है, या उसको समझने के लिए थोड़ी सी दिव्यता हमें भी उपयोग करनी पड़ेगी। जब तक हम दिव्य नहीं बनते तब दिव्यता का अनुभव भी नहीं होता। भगवान का नाम दिव्य है, इससे हमारी दिव्यता प्रकट होती है। तो नाम की सेवा कितनी महत्व की। भूगर्भ गोस्वामी गदाधर पंडित के शिष्य थे, सही। वो लोकनाथ स्वामी और भूगर्भ स्वामी के दोनों की घाट मित्रता थी। चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को वृंदावन सर्वप्रथम भेजा था कि भगवान की दिव्य लीलाएं जहां जहां हुई है वो सारी लीला स्थलियों का वो अन्वेषण करे, इनको प्रकट करें। कहते हैं कि जब वृंदावन आए तो सारा जंगल ही जंगल था, न तो कोई मंदिर था न कुछ नहीं। इनके पास चैतन्य महाप्रभु की कृपा, इनकी दिव्यता और आदेश मत्थे पर लेकर वृंदावन के 12 वनों का नाम लेकर ही चिल्लाते रहते हैं। नाम सिर्फ, हे भांडीर वन, हे काम्य वन, कहा हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, वेर आर यू। तो इनको प्रकट करना कोई ये मामूली पुरातत्व वेत्ता जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और उसमें भी वो कौन सी है जो ताजमहल इत्यादि के बारे में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट, ये पॉलिटिकल सर्वे बन गई है। तो पुरातत्व वेत्ताओं के पास दिव्यता का कोई परिचय नहीं है तो क्या ढूंढेंगे। तो शास्त्र के मुताबिक वो लोग जानते हैं कि यहां होती, चलो यमुना जी का स्रोत अभी भी बह रहा है, कहां है। तो वो लोग हरियाणा में यमुना नगर इत्यादि इसके आसपास खोद रहे तो पानी निकल रहा है, 10 फुट खोद पानी आ रहा है, वो बहता है। ये यमुना का प्रवाह अभी भी चालू है। यहां गंगा का नाम उपस्थित नहीं किया है, मंदाकिनी और यमुना अवश्य करिए। लेकिन गंगा तो बहुत पवित्र है, यमुना और गंगा में फर्क नहीं है। कभी कभी श्रीमद् भागवत में ही हमें गंगा के पर्याय यमुना शब्द ही मिलता है। प्रवाह तो पलटता है, गंगा पहले से ही प्रसिद्ध है। सारा चैप्टर मिलेगा आपको, भगीरथ महाराज ने कैसे गंगा को प्रार्थना की और अपने हजारों पूर्वजों का उद्धार करने का बताया था। शिव जी की कृपा से गंगा का प्रवाह थामा गया। तो ये सब दिव्यता का परिचय करने के बाद ही हमें समझ में आएगा। शास्त्र कोई कपोल कल्पित बातें या परिकथा नहीं कहता। हर एक तत्व को जानने के लिए दिव्य तत्व की पहले पहचान होनी ही चाहिए। वो न होते हुए हमें पड़ा पलाया सिर्फ पुण्यशाली कहलाता है, पवित्र नहीं बनाता। पवित्रता और पुण्य दोनों में बहुत फर्क है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति जब होता है, तो सिद्धांत हमें यहां ये प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं दिव्य है, वो कोई मामूली मनुष्य नहीं है। तो अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वरम इत्यादि हमें सीधा कह देते हैं। तो हमें अपने ढंग से भगवान को जानने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। कोशिश कहां से शुरू होनी चाहिए, उसका उल्लेख शास्त्र में बताया है। जब भगवान दिव्य हैं, इनकी लीलाएं दिव्य हैं, इनका जो जो भौतिक हो या आध्यात्मिक सृष्टि का जो प्रकटीकरण है, एक कामचलाव है, दूसरा सनातन है। कामचलाव को कामचलाव दृष्टि से देखना या मर्यादित दृष्टि से देखना वो समझ की बाहर होती है। लेकिन मनुष्य को चेतना दी गई है, चेतना का स्रोत दिव्य होता है। यदि हमारी चेतना दिव्य नहीं होगी तो हमें कोई भी प्रश्नों के समाधान में हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। कहते हैं कि सारी समस्या जो भौतिक हैं हमने खुद ने पैदा की है, और भगवान ने हमें इस जन्म में मनुष्य योनि में आकर मौका दिया है कि हम यत्किंचित दिव्यता का अनुभव करें। और हमारी प्रगति ये स्थूल शरीर से ऊपर उठाकर और सूक्ष्म शरीर से भी ऊपर उठाकर दिव्य शरीर जो इनका अंश है, इनकी भांति इनकी सेवा में बने रहे। हम तो यहां ही सेवा में झगड़ा पैदा कर देते हैं, तो भौतिकता में दिव्यता कैसे समझ पाएगी। तो मनुष्य अपना विकास किस दृष्टि से करें कि जिससे उसे ये सारे जो वर्णन हैं इसमें दिए गए हैं उसका यथार्थ रूप में समझने की कोशिश कर सके। तो बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, इनका चरित्र दिव्य है, और दिव्यता को समझने के लिए हमें पहले दो चीज करनी पड़ती है। क्या? नाम रूप गुण। गुण कभी आएंगे, दिव्यता का परिचय कभी होता है जब हम भगवान के नाम जप इत्यादि नियमित रूप से करें और स्वरूप की सेवा करें। स्वरूप दिव्य होता है, पित्तल नहीं, तो वहां से हमें दिव्यता की समझ आनी चाहिए। जो हमारा चरित्र में वैष्णव शिष्टाचार यदि नहीं है तो दिव्यता भी नहीं है। हम दुनियादारी के दृष्टि से हम भक्ति करने का कोशिश कर रहे हैं वो सब बेकार है। इसलिए ये व्यवस्थापूर्ण यहां सिखाया जाता है कि सर्वप्रथम नाम, नाम के प्रभाव से स्वरूप, और स्वरूप के प्रभाव से दिव्यता, और बाद में लीला है। हम तो इतनी उतावली करते हैं कि लीला पर ही चढ़ जाते हैं। न दिव्यता का ठिकाना है, न स्वरूप की सेवा का ठिकाना है, सब में कच्चे रहते हैं। तो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी दोनों वृंदावन में, यानी कि सिर्फ घना ही था, इतना घना कि बारह वन में कौन सा वन कहां है वो भी पता नहीं था। आज तो वन ही नहीं रहे, उज्जड़ मैदान, मनुष्य की भौतिकता जो है वो इस दिव्यता का माहौल को दूषित करती है, उजाड़ देती है। लेकिन फिर से हमें यदि वन नहीं है तो कम से कम आभासी तो प्रक्रिया दी गई है, जैसे हम अभी हरि नाम करते हैं आभासी नाम करते हैं, कुछ न कुछ आभास होता है। लोग पहली बार जब वृंदावन की परिसीमा में आते हैं तो हृदय गदगदित हो जाता है अपने आप ही, कितने का अनुभव है, हाथ ऊंचा करो, पहली बार जब आए देखो सभी ऊंचा करेंगे। ये हृदय में जो स्पंदन होता है क्या दिव्य नहीं है, जिसका कोई हम भौतिक कारण या विज्ञान के ढब से नहीं जान पाएंगे, लेकिन होता है सही, ये अनुभव होता है सबका। तो जो दृष्टि से हमारा आध्यात्मिक जीवन जो दिव्यता वाला है उसे पहले स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए नियमित रूप से नित्यम भागवत सेवया, भक्ति दिव्य होती है और उसमें हमेशा विकास बना रहना चाहिए, लेकिन वो क्रमानुसार होता है। ये सभी भवित क्रम, क्रमानुसार उसकी स्थिति होती है। तो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी सिर्फ दिव्यता के माध्यम से इन वनों को पुकार करते करते इन सारे लीला स्थलियों प्रकट कर पाए। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आते पहले इन्होंने कर दिया था, सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु ने उनको ही भेजा था। हम जो जो स्थलियां ज्यादातर परिक्रमा में हम देखने जाते हैं तो वहां ये सारी स्थलियों के पीछे दिव्यता है। ऐसे नहीं कि ये गप्पे मारकर यहाँ कुछ और रोचक लीलाएं भी हुई है ऐसा बताना, नहीं नहीं, रोचकता से दिव्यता ज्यादा महत्व की होती है। रोचक होना हमारी मन षष्ठानी इंद्रियाणी को आकर्षित करती है और हमें ये भाव देती है कि हमें भी ऐसी लीला करनी चाहिए। लीला में शामिल तो कब हो सकते हैं, जब दिव्यता का परिचय होता है तभी ही प्रकट होती है, उसे पहले नहीं होती। यदि पहले होती तो भी समझ नहीं पाते, यानी कि हम लोग उसमें दिव्यता में उतरने का जो खेल खेल रहे हैं इसके पीछे हम जगह नहीं है, दिखावा कर रहे हैं तो जगह नहीं। तो कहा गया है कि ये दिव्यता जो छिपी है वो कहां से प्राप्त होगी, कृष्ण भगवान से सिद्धि प्राप्त करेंगे या कृष्ण भगवान के कहे अनुसार समझने का प्रयत्न जब भगवद गीता में तो उसे प्राप्त करेंगे, या भगवान के विशुद्ध भक्त जो हैं उनसे कुछ प्रेरणा मिलकर दिव्यता समझ पाए। साधना तो करनी ही है लेकिन साधना में दिव्यता का संचार होना चाहिए, यंत्रवत साधना करने से कोई फायदा नहीं बताया है। तो दिव्यता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ऐसे नहीं कि काम चलाओ हमें दिव्यता का परिचय होगा बाद में विश्वास रखेंगे, नहीं। जो अंतरंग वास्तविकता तो दिव्यता में भरी है जो भौतिकता में नहीं, जहां सत्व रज और तमोगुण का अभाव है वो दिव्य भाव है। अभी तो समझ में आता है कि नहीं, हमें तीनों गुणों से परे उठना है। त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रगुण्य भवार्जुन। अर्जुन को क्यों कहते हैं? अरे लड़ाई के मैदान में, लड़ाई के मैदान में तो सुरवीरता और रजोगुण से ही तो लड़ सकते हैं, यूं समझेंगे हम। लेकिन यह सारी शक्ति कौन देता है? अर्जुन ये समझ पाया है कि जो कुछ है कृष्ण भगवान है। जब मैं मानता हूं उसे रुतम स्वीकारता हूं, रुतम यानी वास्तविक। सर्वमृत रुतम मन्ये यन्माम वदसी केशव, नहीं ते व्यक्तिन विदुर देवान दानवा। भगवान आपके व्यक्तित्व को देवता और दानव तो समझ ही नहीं पाते। तब भक्ति ऐसी चीज है जहां दिव्यता प्रकट होनी ही चाहिए और वो प्रमाण प्रामाणिक रूप से हमें स्वीकारनी है। तो ये सब साधु महात्माओं को क्यों हम याद करते हैं? काशीश्वर पंडित वे ईश्वरपुरी के शिष्य थे, एक गोविंद और दूसरे काशीश्वर। ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु की सेवा में इन दोनों को भेजा, जगन्नाथपुरी जाओ। वो तो गुरु आज्ञा लेकर आ गए। अरे गुरु भाई की सेवा के लिए तो चैतन्य महाप्रभु कि नहीं 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 नहीं, आप तो मेरे गुरु भाई हो, आपके पास कैसे मैं सेवा स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो गुरु आज्ञा। तब चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। तो काशीश्वर पंडित पट्ठे थे। चैतन्य महाप्रभु जहां जाते थे उसके आगे वो चलते थे और सभी को हटाते थे, मार्ग में से हटो, कोई छूने मत जाना। ये इनका एकमात्र सेवा थी। और उसके बाद यदि प्रसाद सेवा भी करते हैं, सबको बांटते थे, ये मेनियल सेवा कहलाती है। अपने आप को अपने अंगों द्वारा सेवा कर। ऐसे व्यक्ति भगवान के निजी परिकर है। भगवान दिव्य हैं तो इनके परिकर भी तो दिव्य होने चाहिए, सही? दोनों भूगर्भ गोस्वामी और काशीश्वर पंडित। वैसे चैतन्य महाप्रभु के ये नित्य परिकर जो होते हैं के चैतन्य संगी संगे नित्य सिद्ध करी माने जे जाए ब्रजेंद्र सुत पास। चैतन्य महाप्रभु के ऐसे परिकर को कैसे हमें समझना है? नित्य सिद्ध इस इन लोगों पर विश्वास रखो। चैतन्य महाप्रभु के परिकरों पर विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास रखो और इनके बताए अनुसार हम सेवा करें। इनके भाव, इनके मूड और मिशन कहते हैं ना, इनके हम प्रभुपाद जी के मूड के मिशन और दोनों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यही तो इनकी संस्था है। इसमें तीसरे को दखलगिरी नहीं करना, लेकिन अपने पूर्ववर्ती आचार्य हैं ये सब, और इन लोगों का उदाहरण भी हमारे लिए बहुत आदर्श होता है। यदि हमें कृष्ण भगवान के पास जाना है और वो भी ब्रजेंद्र सुत के पास जाना है वृंदावन के, तो चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी जो हैं इन पर पूर्ण विश्वास कर इनके चरणानुगामी बने, नित्य सिद्ध करी माने। तो ये सिद्धांत अपनाना पड़ता है। और शास्त्र में ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, लेकिन स्वयं वो तो गोलक वृंदावन में ही रहते हैं। तो हमारी चेतना का उद्गम भी गोलोक वृंदावन बने, दिव्य बने, उसकी दिव्यता है, लेकिन वापस स्थापित करें जो हम भूल गए हैं ये भौतिक शरीर में आकर, वो काफी आवश्यक होता है, काफी आवश्यक होता है, तब भक्ति में प्रगति समझी जाती है। इसलिए जो सिद्धांत बहुत बलवान होता है, महत्व का होता है, उसको समझना और यथावत स्वीकारना, तो सृष्टि की रचना और जो दिव्य ढंग से हुई है, भगवान की रचना कोई मामूली होती ही नहीं, दिव्य है। तो दिव्यता का परिचय करने के लिए ही हमें एकमात्र ये शरीर दिया है, जो लब्ध्वा इदं सुदुर्लभम बहु संभवान्ते, अनेक अनेक जन्मों बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसका सदुपयोग अपनी दिव्यता प्रकट करने में ही होती है। दूसरों के लिए प्रकट नहीं करनी, हमारे लिए ही करनी होती है। तो उस आदर्श हमारे नजर समक्ष है, हमारी भक्ति का जो प्रयोग है, साधना है, जो परंपरा में चली आई है, इसी तरह यथावत स्वीकार करें, ये सब दिव्य है। दिव्य हमेशा पूर्ण होता है, दिव्यता में अपूर्णता कभी नहीं होती। हम यदि पूर्णता के साथ रहते हैं तो हमें पूर्ण बनने का अवसर प्राप्त होता है, नहीं तो अपने आप में हम अपूर्ण हैं। यानी कि विशुद्ध भक्ति द्वारा पूर्णता इन लोगों के संग में, इन लोगों के समझाए अनुसार, इन लोगों के चरणानुगामी बनने के अनुसार प्राप्त होती है। क्योंकि दिव्यता शब्द काफी गहरा है। सभी लोग समझते हैं, सभी धर्म वाले भी समझते हैं, उसे डिवाइन कहते हैं। कम से कम दिव्यता का डी रखा है, वाइन नहीं रखा है हमने। वो लोग समझ रहे हैं कि देखो थोड़ा जब बाप्टिज्म करते हैं ना क्रिश्चियनिटी में, तो थोड़ा शराब पिलाते हैं, तो वाइन तो डिवाइन कनेक्शन हो गया कहते हैं। नहीं, दिव्यता के लेके बाहरी कोई उपचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव दिव्य है, उनकी सफाई ही करना हमारा एकमात्र कार्य रहता है जो भक्ति कहलाता है। तो भक्ति के साथ भक्ति दिव्य है, भगवान दिव्य है, जीव दिव्य है, और ये सब सनातन है, दूसरा कोई धर्म सनातन नहीं। आप चाहे देवता में मानते हो या किसी क्रिया में मानते हो, कुछ सनातन नहीं, कर्मकांड सनातन नहीं बताया। तो अवश्य हमें ये बताया जाता है कि भगवान दिव्य हैं, वो समझ सकते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ो तो भगवान के अवतारें दिव्य हैं, अवतारों ने जो लीला की है वो भी दिव्य समझ सकते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हम थे नहीं। क्या आप मत्स्य अवतार लीला में थे? तो फिर अभी ये दशावतार भी हमारे लिए मुख्य मुख्य कहलाए हैं। इन्हें तो अवतार हरेर असंख्यानी, अनलिमिटेड, और हर एक अवतारों में विविधताएं होती है। अरे दस में तो जानो, तो अवतारों से हमें थोड़ा सीखना मिलता है। चलो, लेकिन अवतारों में भी इतनी परेशानी होती है। आप दक्षिण भारत में जाओगे तो कहेंगे विष्णु ही महान है, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने सारा पलटा मरवाया, एनंगे के कृष्ण ही आदि पुरुषम है, विष्णु इनके गुणावतार में आते हैं, पुरुषावतार में आते हैं, गुणावतार में भी आते हैं। ये काफी विप्लववादी नहीं है, लेकिन सत्य के प्रति और अनुभूति कराने के लिए सक्षम है। जो कलयुग के हम पामर जीवों को जंतु कहलाने वाले हैं, इनके लिए चैतन्य महाप्रभु का ये दिव्य हरे कृष्ण आंदोलन का जो परिचय है वो मामूला नहीं समझना चाहिए। ये तो हरे कृष्ण वाले हैं, घर में भी झगड़ा कराने वाले हैं। नहीं, जीवन का लक्ष्य जो है, चाहे हमें किसी भी ढंग से यहां इस्कॉन में आने के लिए यदि प्राप्त होता है तो धन्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी को कोई प्रश्न है? सुनाई नहीं देता हूं। हाँ, मैं ऑलमोस्ट 60% डेफ हो गया।
हाँ,
नित्य सिद्ध, सिद्ध याने परफेक्ट, नित्य, वो कभी गिरने वाले नहीं है, वो भगवान के नित्य परिकर होते हैं, नित्य मुक्त जीव होते हैं। वो इनके साथ इनको सेवा के लिए जब अवतरते हैं तो क्या है, वो उनके नित्य सिद्धता छोड़ के आते हैं, हमारे जैसे होते हैं। हाँ, जब भगवान आते हैं तब नित्य परिकर भी आते हैं, भगवान आदेश देते हैं कि जाओ, अब भी आओ। ब्रजवासी जो बने हैं इनमें से बहुत कैटेगरी वाले हैं। हाँ, भगवान अवतरते पहले उन्होंने आदेश दिया। हाँ, ज्यादातर इनके नित्य परिकर ही होते थे। जीव तत्व, जीव तत्व भगवान के साथ सीधा व्यवहार नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि वो दिव्यता भूल चुका है। लेकिन कोई भक्तोन्मुखी सुकृति के द्वारा यदि भगवान की सेवा में जुड़ जाता है, लेकिन भक्तों का माध्यम होना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे भक्तों का माध्यम कोई दिव्यता वाले पुरुष के साथ होना चाहिए। जो जीवन मुक्त तो सभी बन सकते हैं यदि हम ये प्रोसेस फॉलो करें, पर लेकिन नित्य सिद्ध इसमें तो ये तो क्रमानुसार वो जो परंपरा होती है ना, इनके पथ पर चल के ही हमें समझ में आएगी कि कौन भगवान के नित्य परिकर थे। जब हम गोस्वामी के रूप पर आते हैं तो क्या इनकी जो स्थिति, वो कौन सी मंजरी, रूप मंजरी है? तो ये सभी दिव्य परिकर के पहले प्रचलित जो इनकी सेवा थी उसका संदर्भ लेकर आते हैं, रेफरेंस होता है। हाँ, गौर गुणोद्देश दीपिका में इन सब का उल्लेख है। क्यों हमें इनके चरण कमल में क्यों चलना चाहिए? हाँ, संदर्भ है। हमें ये गोस्वामियों के समाधि के दर्शन क्यों करना चाहिए जो नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। उनकी सेवा द्वारा दिव्यता की प्रेरणा होती है। इनको इनके हर एक चरित्र पर हम जो जब जितनी जानकारी प्राप्त करते हैं उसमें हमें भगवान की दिव्यता का ही अनुभव होना चाहिए कि कैसे ऐसे जीव में भी हुई हैं जो भगवान के नित्य परिकर नित्य सिद्ध बने। जरा माइक में बोलो। ये सुनाई देता है।
हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा,
बहुत बहुत धन्यवाद आपके दिव्य लेक्चर के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम किस तरह साधना करें कि हमारी हमारे अंदर दिव्यता प्रकट हो।
दिव्यता की सेवा करने से दिव्यता है तो प्रकट होगी। तो भगवान का नाम दिव्य है, मामूली नहीं है, तो उस पर हमें कितनी सजागता रखनी पड़ेगी। बेध्यानपना ये दिव्यता पर काफी खतरनाक साबित होता है, जो अपराध में भी चला जाता है। तो इन सारी चीजों पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि नहीं, हमने जो जो प्राप्त किया है दुनिया में बहुत मामूला समझा जाता होगा, लेकिन उनकी तरह हमें नहीं समझना है। ये अंतर मुखी बनकर हम अवश्य आगे बढ़ सकते हैं। जब कृष्ण भगवान को भूल जाते हैं तभी तो बहिर्मुख हो जाते हैं, लेकिन अंतर्मुखी बनना पड़ता है। अपने आप अंदर ही कितने छिद्र हैं उनको पूरे, नहीं तो दिव्यता सारी बह जाती है, पकड़ नहीं पाते। इतनी सजागता रखनी चाहिए। निरपराध भगवान का नाम लेना चाहिए, वो भी कितना मुश्किल होता है। भगवान का नाम लेते समय दूसरे विचार आ जाते हैं तो कितना खिचड़ा दिमाग में होगा। दुनियादारी वाले लोग कहते हैं कि जब खिचड़ी में घी डर जाता है तो निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया में तो निकल पाता है। हमें घी तो चाहिए, जो अर्क है। और कोई प्रश्न? कोई है सुझाव, सुधार? हाँ जी, माइक दे दो। ए वही तकलीफ है, इसके सामने मत। ये चिल्लाता है, इसके सामने जब लाते हैं।
महाराज जी, आपने भी बताया कि दिव्यता सारे छिद्रों से बह जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या करेंगे?
ओह माय गॉड, सब अपने अपने छिद्रों को संभालें। छिद्र ढूंढना वही तो मुख्य काम होता है। मेरे तो अनेक है, करें क्या, आप मदद करिए क्या हमारे छिद्र को, जो हमसे छुपे नहीं रहते भागे जाते हैं, इनको बताओ। वैष्णव शिष्टाचार छिद्र पूरने का पूरे पूरा तरीका इतना गहरा है और इतने छिद्र तो रहने ही चाहिए, जैसे कोई प्लम्बिंग करता है और पानी टपकता रहता है तो प्लम्बिंग कैसा हुआ, वो तो सीलंग दीवार में डालता है तो सारा नुकसान करता है, छिद्र चार, अरे इतना तो होता ही है, अब स्वीकार लो तो सारे घर में सिलन ही सिलन मिलेगी, वो एक एक छिद्र नहीं पूरा कर सकता। तो अंतर के छिद्र कितने अनादि काल से पैदा हुए हैं, अनादि काल से, हर एक जन्म में हमने छिद्र बढ़ाए हैं, कम नहीं किए। अभी कब करने का आता है तो बहुत सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान का नाम की शक्ति भी तो होती है ना, ये सारी समस्याओं को मिटाने वाली है। अभी क्या बयान करें छिद्रों का, छिद्रों कैसे होते हैं, छिद्र की महिमा गाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो छुपाने की भी आवश्यकता नहीं, निकालने की ही आवश्यकता होती है। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।